श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरने रघुबर बिमल यस जो दायक फल चार बोधिहीन तनु जान के सुमरेउ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मुहि हरेउ कलेश विकार। हाँ तो बंधुओं, ये मैं कृपाल सिंह मीना सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज के माध्यम से आप लोगों के समक्ष में राम विवाह का पावन प्रसंग सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इससे पहले वाणी को पवित्र करने हेतु हरि नाम संकीर्तन बोलें, इसके बाद कथा आरंभ करें। सुनो भक्तों सब बोलो जरा मिलके बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। सुनो भक्तों जरा बोलो सब मिलके बोलो राम
के बोलो राम 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 जय सिया राम 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 बोलो राम 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 प्यारा नाम नाम नाम। वो है करुणा के धाम तीनों के सहायक राम सदा वो है करुणा के धाम सदा तीनों के सहायक राम सदा। इस महामंत्र को भजने से प्रभु सदा सदा कल्याण करे जरा जपुले अरे पगले जरा जपुले अरे पगले बोलो राम 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 प्यारा नाम 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 बोलो राम 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 प्यारा नाम नाम नाम। क्या सोच विचार करे मन प्रभु व्यापक हैं सब जन जन में क्या सोच विचार करे मन में प्रभु व्यापक हैं सब जन जन में। जीवन दो दिन का मेला है सब छोड़ छाड़ गुणगान करो मत भूलो जरा बोलो मत भूलो जरा बोलो बोलो राम 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 प्यारा नाम 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 बोलो राम 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 प्यारा नाम नाम नाम। सुनो भक्तों जरा बोलो सब मिलके बोलो राम 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 प्यारा नाम 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 जय सिया राम 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 बोलो राम
तो बंधुओं, इधर मुनि विश्वामित्र द्वारा यज्ञ का आयोजन किया जाता है और उनके यज्ञ को राक्षसों द्वारा विध्वंस किया जाता है और यज्ञ को विध्वंस देखकर विश्वामित्र मुनि विचार करते हैं क्या।
गाधी तने मन चिंता व्यापी, बिनु हरि कृपा मिरई नहीं पापी। तब मुनि बर यस कीन विचार,
महर्षि विश्वामित्र मुनि जब अपने ध्यान योग से देखते हैं तो इधर भगवान अखंड ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमात्मा श्री राम अपने अंशों के सहित अयोध्यापुरी में महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट होते हैं अर्थात जन्म लेते हैं और मुनिराज राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को अपने साथ लाने के लिए चले हैं कहाँ, अयोध्यापुरी। और एक पहरी ने महाराज से जाकर कहता है तो राजा क्या करते हैं।
मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गय उले विप्र समाजा, मिलन गय उले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सनुमानी, निज आसन बैठा रे न्यानी।
महर्षि विश्वामित्र का आगमन महाराज दशरथ अपने श्रवणों से सुनते हैं। अपने जीवन को धन्य मानते हुए विप्र समाज अर्थात संत समाज के साथ मुनिराज के आगमन के लिए जाते हैं और उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाकर मुनिराज के चरण पखारते हैं तथा विदित भांति भोजन करवाते हैं। इसके बाद महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों को मुनिराज के दर्शन के लिए बुलवाते हैं और जैसे मुनिराज चारों पुत्रों को देखते हैं अपनी देह की सुध भी भूल जाते हैं। और क्या हुआ,
पुनि चरुणन में ले सुत चारी, जल राम देखो मुनि देह बिसारी। भय
बाद महाराज दशरथ हाथ जोड़कर विश्वामित्र मुनि से कहते हैं, कहिए ऋषिराज आपकी परम कृपा इस सेवक के ऊपर कैसे बनी, नाथ इस कारण आपका आगमन हुआ, इस दास से निसंकोच कहिएगा। तो ऋषिराज कहते हैं, बंधुओं क्या,
मैं यज्ञ जिस समय करता हूं दुख मुझको निश्चर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं, रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ मैं।
और सुनो महाराज,
तू अपने पुत्र राम लखन दे सोंप मुझे कुछ दिवसों को, पुण्य सुख से कल्याण हर्षुन दोनों को। महाराज, जब जब भी मैं यज्ञ का आयोजन करता हूँ तभी तभी निशाचर मेरे यज्ञ को नष्ट कर देते हैं और अपने यज्ञार्थ में आपके पास राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को कुछ दिन के लिए अपने साथ ले जाने आया हूँ। और आप कहिए, किसी भी प्रकार का शोक न करिएगा राजन, अपने दोनों पुत्रों को मुझे अर्पण करें। बंधुओं, मुनिराज के वचनों को सुनकर महाराज दशरथ व्याकुल हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं और क्या बोलें।
न मांगो मुनि राम लक्ष्मण हमारे, न मांगो मुनि राम लक्ष्मण हमारे, एक स्वामी नहीं तो प्राणी चल जाएंगे, नहीं तो प्राणी चल जाएंगे। न मांगो मुनि राम लक्ष्मण हमारे, न मांगो मुनि राम लक्ष्मण हमारे, एक स्वामी नहीं तो प्राणी चल जाएंगे, नहीं तो प्राणी चल जाएंगे।
और राजा दशरथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे और क्या बोले हैं।
हे मुनिवर दोनों बालक हैं भोले भाले, नादान से हैं, हे मुनिवर दोनों बालक हैं भोले भाले, नादान से हैं, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़
मुनिवर, बेटा राम और बेटा लक्ष्मण दोनों ही भाई अभी तो दुधमुही बालक हैं, नाथ में किस प्रकार बड़े बड़े राक्षस को मार पाएंगे। और हाँ मुनिवर, इन्हें रण विद्या का ज्ञान भी नहीं है, ये तो अभी भोले भाले हैं, नादान हैं, और आपके यज्ञ की रक्षा नहीं कर पाएंगे नाथ, नहीं कर पाएंगे।
कहानी शरियति घोर कठोर,
कहाँ बड़े बड़े राक्षस और कहाँ ये छोटे छोटे बालक, ये तो असंभव है स्वामी, और क्या बोले हैं।
वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, वैसे तो
स्वामी एक काम हो सकता है, जितने भी राज्य के लड़ाक साधन हैं लश्करों और सैनिकों के साथ मैं भी चल सकता हूँ और आपके यज्ञ पूर्ण करा देता हूँ नाथ, मगर राम और लक्ष्मण नहीं दे पाऊँगा। और वैसे तो चारों पुत्र ही प्यारे हैं, मगर राम और लक्ष्मण मेरे प्राणों से भी ज़्यादा प्यारे हैं। मुनिराज, आप कुछ और मांग लीजिए, मगर राम और लक्ष्मण नहीं दे सकूँगा। तो विश्वामित्र मुनि क्रोधित होने लगे और क्या कहने लगे,
दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों से ममता है, जा चुकी जवानी फिर भी ये माया में इतनी भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब इतनी उलझन, कुछ दिन को उन्हें देने में बस इतनी बातें इतनी अड़चन।
अरे ओ राजा, अगर मैं विष्णु से कह देता तो वे अपना गरुड़ छोड़ के चल देता। अगर मैं यही बात देव आदि महादेव भगवान शंकर से कह देता तो उनका भी सिंहासन हिल जाता। और एक तू है जो अपनी राम और लक्ष्मण को देने से इनकार करता है। और सुन,
मांगी जो तुझ से ये भिक्षा इसलिए मुझे संताप हुआ। मांगी
बंधु हो। महर्षि विश्वामित्र अति क्रोधित हो जाते हैं और चल देते हैं। तभी गुरु वशिष्ठ जी का आगमन होता है और महाराज दशरथ विश्वामित्र का सारा वृतांत कहकर सुनाते हैं। और क्या होता है, कहते हैं वशिष्ठ जी से, हे नाथ, जब अपने बेटा राम का नामकरण किया तब मैंने आपसे बहुत निवेदन किया, आग्रह किया कि बेटा राम के नाम के आगे चंद्र मत लगाना, क्योंकि भगवान मेरे पूर्वजों के जिन जिन के नामों के आगे चंद्र लगा है। उसी उसी समय विश्वामित्र मुनि का आगमन हुआ और देखिए ना महाराज, हरिश्चंद्र को उनके नाम में भी चंद्र लगा था, तो उनके यहाँ भी विश्वामित्र मुनि का आगमन हुआ और जरा भी दया ना आई और तीनों प्राणियों को काशी के भरे बाजार में बेच दिया। और बेटा राम के नाम में भी चंद्र लगा तो फिर विश्वामित्र मुनि का आगमन हुआ, मुझसे राम लक्ष्मण मांग रहे हैं, मैंने देने से इनकार किया। तब वशिष्ठ जी क्या कहते हैं,
अति वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नपु संदेह नाथ कह पावा। अति
वशिष्ठ जी के समझाने पर महाराज दशरथ अपने दोनों बेटा राम और लक्ष्मण को सौंप देते हैं और क्या कह रहे हैं,
लो हाथ में इन का हाथ नाथ, ये दोनों ये
दशरथ कहते हैं, क्षमा करिए मुनिवर, ये दोनों पुत्रों को के हाथ मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ, और इनसे किसी प्रकार की गलती हो जाए तो इनको क्षमा करना, तो और इनकी गलती का कोई ध्यान ना धरना और क्षमा करें नाथ। ऐसा क्या हुआ और क्या हुआ बंधुओं?
पितु का आशीष प्राप्त कर माँ से ले वरदान, ऋषि सेवा में चल दिए दोनों ही बलवान।
हाँ तो मित्रों, मुनिवर राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को लेकर के अपने आश्रम पर आ जाते हैं, और प्रातःकाल होते ही भगवान श्री राम मुनिराज से कहते हैं,
प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, 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 निर्भय जागी करूं तुम पाई।
हे मुनिराज, आप यज्ञ करिएगा और हम दोनों भाई रखवारी के लिए यहाँ तैयार हैं। और यज्ञ किस प्रकार से आरंभ होता है?
आरंभ यज्ञ के होते ही असुरों का मंडल आ पहुंचा,
क्षण भर में राक्षसों का संहार करते हैं और मुनिवर के यज्ञ को पूर्ण करते हैं।
अगले दिन मुनि को मिला ये सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश।
हे राम, आपको जिस कार्य के लिए बुलाया वह तो आपकी कृपा से पूरा हुआ, और आप चाहे तो राजा जनकपुर में विधे अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर का आयोजन रखा है, आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। तो बंधुओं, गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम लक्ष्मण उनके साथ चल देते हैं, और क्या हुआ?
चलते चलते बह जगह मिली छायान जहां दिखलाती है, जिसे
गुरुदेव यह कैसा दृश्य है, जहाँ ना कहीं छाया है ना कहीं जल है, ये सारी की सारी धरती मरी भूमि की तरह दिखाई देती हैं। हे राम, ये गौतम आश्रम है, यहाँ गौतम पत्नी अहिल्या पति श्राप के द्वारा पाषाण रूप में आपके श्री चरणों को के इंतजार में लग रही है, और राम क्या बोले हैं?
छुआ चरण से शिला को रघुवर ने तत्काल, पजरज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल।
तो बंधुओं, इस प्रकार अहिल्या का उद्धार करते हैं। ये दृश्य देखकर आकाश से देवता अहिल्या के भाग्य की सराहना करते हैं। किस प्रकार?
अहिल्या बड़े भाग्य तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। अहिल्या बड़े भाग्य तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। अहिल्या बड़े भाग्य तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। जो रघुबर तक पहुंच न पाते, जो रघुबर तक पहुंच न पाते, उनके घर प्रभु चल कर जाते, उनके घर प्रभु चल कर जाते। पश्चाताप के दो आंसू ही प्रभु को प्यारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। अहिल्या बड़े भाग तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। इस जग में तेरे भाग्य बड़े हैं, इस जग में तेरे भाग्य बड़े हैं, क्योंकि दर तेरे राम खड़े हैं, क्योंकि दर तेरे राम खड़े हैं। भक्तों की रक्षा प्रभु करने को नर्तन धारे हैं, अहिल्या बड़े भाग्य तिहारे। तेरे दस व्रत के दुलारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। अहिल्या बड़े भाग्य तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। बड़े भाग्य तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। अहिल्या बड़े भाग्य तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं।
हाँ तो बंधुओं, इधर देवता जय जयकार करते हुए चले जाते हैं। आगे क्या हुआ?
चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा। गाती सुने सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरी मैयाई।
बंधुओं, भगवान श्री राम लक्ष्मण गुरु समेत गंगा तट पहुँचे तथा विश्राम करते हैं। दोनों भाइयों को मुनिवर गंगा भवतरण की कथा सुनाते हैं और विश्राम के बाद फिर आगे को प्रस्थान करते हैं। क्या हुआ?
जनक राज ने जब सुना आए हैं मुनिनाथ, रामा आए हैं मुनिनाथ, स्वागत करने चले वे ब्राह्मण दल के साथ।
इधर राजा विदेह को मालूम होता है कि गाधी तने अपने समूचे शिष्यों को तथा राम लक्ष्मण को लेकर मिथिलापुर में आए हैं। और क्या हुआ? महाराज विदेह ब्राह्मणों के साथ उनकी आगवानी के लिए आता है। और क्या हुआ?
बोले मेरे देश के धन्य भाग्य हैं आज, भूकृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मुनिराज।
मेरे बड़े भाग्य हैं मुनिराज, जो कि आज मुझे आपके दर्शन हुए, और यह बताने की कृपा करें कि जो बालक हैं वो कौन हैं तथा किसके पुत्र हैं। और क्या हुआ?
हे आप कृपा निधि विद्या निधि धर्म के धर्म संचालक हैं, हे आप कृपा निधि विद्या निधि धर्म के धर्म संचालक हैं, ये श्याम गोर दोनों कुमार, ये श्याम
स्वामी ये किन के पुत्र हैं जिनकी शोभा को देखकर नेत्र भी धन्य हो गए, और इनमें कोई अवलौकिक शक्ति है जो मुझे जान पड़ता है। आप मुझे ये कहकर बताएं ये किस भाग्यवान के बालक हैं। मुनिवर कहने लगे, आप ठीक कह रहे हैं विदेहराज, हम बताते हैं ये किन के पुत्र हैं।
ये दोनों पुत्र अवध नपू के हैं, नाम राम लखन है इनका ये। पदरज से श्राप निवारा है, अब धनुष महोत्सव के कारण ये दोनों भाई आए।
यहाँ तो बंधु हो। विदेहराज ने दोनों राजकुमारों की कीर्ति कौशल सुनकर अति प्रसन्न हुए और समस्त ऋषियों तथा मुनिराज तथा राम लक्ष्मण को सुंदर स्थान पर ठहराया गया। अब आगे क्या होता है सुनिए। भगवान श्री राम ने अपने भैया लक्ष्मण की बात जानकर और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, हे गुरुदेव,
नाथ लखन पुर देखन चाही, 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 प्रभु संकोच प्रगट ना कयाही। जोरा उरिया यश में पावो, जोरा उरिया यश में पावो, नगर देखाई तुरंत ले आवो।
हे गुरुदेव, मेरे भैया लक्ष्मण की लालसा है कि मिथिला नगर को देखूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को नगर दिखाकर अभी लाता हूं। गुरुवर कहने लगे, तुम धन्य हो राम, धन्य हो।
जाई देखिया बहु नगर सकुन भान दो भाई, करूं सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई।
जाओ राम, अपने भैया को नगर की शोभा दिखाओ और आते समय मेरे लिए पूजा के लिए पुष्प लेते आना। तो मित्रों, जब श्री राम अपने भैया के साथ जनकपुर की शोभा को देखने चले और जनकपुर के नरनारी प्रभु की सुंदरता को देख रहे हैं, तो कोई झरोकों से झांक रही हैं, तो कोई अटारियों पे देख रही हैं और कोई कह रही हैं, ये बहना देख, ये कितने सुंदर राजकुमार हैं, यही हैं वो राजा दशरथ के पुत्र। दूसरी कहने लगी, हाँ तू सत्य कह रही है, इन दोनों ही विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की है। और एक बोली, अरे बहना नहीं, राजा की प्रतिज्ञा चाहे कुछ भी हो, ये सांवले सलोने राजकुमार ही सीता के योग्य वर हैं। एक बोली, ये इनका संबंध यहाँ हो गया तो इनका भी आना जाना बना रहेगा और हमें दर्शन का लाभ मिलता रहेगा।
देखी राम छवि को एक कया
राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका में पुष्प चुन रहे थे और जानकी जी भी गिरजा जी का पूजन के लिए वाटिका आती हैं। यहाँ पर ही बंधुओं करुणा वरुणालय भगवान श्री राम और माँ जनक नंदिनी सीता का प्रथम मिलन होता है। राम लक्ष्मण पुष्प लेकर गुरुदेव के पास आ जाते हैं और किशोरी जी भी गिरजा पूजन कर वापस हो जाती हैं। और इधर महाराज जनक स्वयंवर का कारण सुनाते हैं किस तरह से।
इससे धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, इसे ये धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, वही मेरा जमाता बन, वही मेरा जमाता बन, सीता से नाता छोड़ेगा।
महाराज कहते हैं, देश देश से आए हुए राजाओं, एक दिन मेरी पुत्री सीता ने यह शिव का धनुष खेल खेल में उठा लिया था और उसी दिन से मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। ये सुनकर सभी राजागण एकत्रित हो जाते हैं और धनुष तोड़ने को आदेश की बाट निहार रहे हैं। और इधर बंदीजनों ने महाराज जनक को आदेश सुनाया,
यह महामहोत्सव समारोह राज
युद्ध में शिव का धनुष विशाल, रामा शिव का धनुष विशाल। इधर देख लो जानकी खड़ी लिए जय माल। उधर देख लो जानकी खड़ी लिए जय माल, सियावर रामचंद्र की जय। बंधुओं, देश देशांतर के राजागण महाराज जनक के आदेश को सुनकर धनुष उठाते हैं, तो फिर सब एक साथ धनुष उठाते हैं और ये दृश्य भगवान अपनी सभा मध्य से देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और देखें किस प्रकार धनुष को तोड़ा जा रहा है।
भूप से हस दस कई वारा, भूप से हस दस कई वारा, भूप से हस दस कई वारा,
मगर सभी राजाओं से धनुष हिला तक नहीं। सब राजा लजायमान हो गए, सारे वीरों का मस्तक नीचे हो गया। तब महाराज जनक सभी राजाओं को फटकार लगाते हैं और कहते हैं, अरे ओ राजाओं, और क्या बोले हैं,
हे देश देश के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली हैं, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है, लज्जा है, पुत्र को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया हे दाता।
धिक्कार है तुम्हारी वीरता को, अरे उठाना तो बहुत बड़ी बात है, आप तिल भर हिला ना सके। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरी पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं है, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, और इस पर मगर मित्रों महाराज के वचन लक्ष्मण कुमार सहन ना कर सके और सभा मध्य आकर कहते हैं,
सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं से सकते हैं।
कहते हैं शांत लक्ष्मण शांत, अरे जो भी कुछ महाराज ने किया है वे हमसे थोड़ा नहीं कह रहे हैं, और हम तो गुरुदेव के साथ सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए हैं, और क्या हुआ।
विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय वाणी, उठे राम भन जौ भव चापा, उठे राम भन जौ भव चापा, मेटही जनक राज परितापा,
समय जानकर विश्वामित्र मुनि कहते हैं उठो राम उठो, इस धनुष को तोड़ो, जनक राज के संताप को दूर करो। गुरु वचन सुनकर श्री राम धनुष के पास आते हैं, तभी माँ सुनैना कहने लगी, अरे कोई तो महाराज को समझा दो, जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा हिला ना सके न डुला सके, और क्या हंसी बाकी है इन बच्चों के द्वारा करवा रहे हैं। तभी एक चतुर सखी उन्हें समझाती है, महारानी जी ऐसी बात नहीं है, यही तोड़ेंगे धनुष को, क्या हुआ।
गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, 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 अति लाघव उठाए धनु लीना,
पलभर में भगवान श्री राम ने धनुष को दो खंडों में विभाजित किया, और आकाश से देवताओं द्वारा पुष्प बरसाए जा रहे हैं, और जय जयकार करने लगे, और क्या हुआ।
सतानंद मिथुलेश की आज्ञा से तत्काल, रामा आज्ञा से तत्काल, राम और सीता चली पहनाने जय मां,
बंधुओं। सतानंद जी जनक से पूछने लगे, राजन जानकी का विवाह चाप के अधीन था सो पूरा हुआ, और इधर भगवान धनुष को तोड़ देते हैं, इधर राम जी का विवाह हुआ, देवता आकाश मार्ग से फूल बरसा रहे हैं, और क्या हुआ।
भरत लखन के बड़े भैया आज बनेंगे सिया के सैया, भरत लखन के बड़े भैया आज बनेंगे सिया के सैया, ढोल नगाड़े बज सहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया, राजा ने ये ठान।
आकाश मार्ग से फूल बरसा रहे हैं, उधर सखियां किस प्रकार से गीत गा रही हैं।
हरे वास मंडप छाए सियाजू को राम ब्याहने आए, हरे वास मंडप छाए सियाजू को राम ब्याहने आए।
आवाज को सुनकर परशुराम एकदम से आते हैं और क्या कहते हैं,
ओ मिथिलापति जल्दी बतला ये धन बापो किसने तोड़ा है, ये भरे स्वयंवर में नाता सीता से किसने जोड़ा है।
परशुराम जी के सामने कोई बोल नहीं पा रहा था, सारा का सारा वातावरण सन्नाटे में बदल गया। तभी भगवान श्री राम अपने सरल स्वभाव से हाथ जोड़कर क्या कहते हैं, प्रभु
शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा
we ध्यान कर जब सब गए विराज रामा जब सब गए विराज दुल्हन को मंडप तले लाया सखी समा सीता और दूल्हा श्री राम को मंडप तले लाया जाता है और वेदों के अनुसार भावर डाली जाती है। इसी प्रकार श्री राम जी और जनक नंदिनी का विवाह होता है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।